नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विद्यार्थियों से कहा, परीक्षा की अपनी तैयारी के तरीके पर पूर्ण भरोसा रखें। शिक्षकों से प्रत्येक विद्यार्थी के सीखने की गति के प्रति संवेदनशील रहने को कहा। लोकसभा की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित। रिजर्व बैंक ने रेपो दर 5.25% पर बनाए रखी। रूस और अमरीका 4 साल बाद उच्च स्तरीय सैन्य वार्ता फिर शुरू करने पर सहमत। जिम्बाब्वे में अंडर 19 एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में भारत और इंग्लैंड के बीच फाइनल मुकाबला जारी। और बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में भारतीय महिला टीम क्वार्टर फाइनल में चीन से हार कर टूर्नामेंट से बाहर। पुरुष टीम का आज शाम क्वार्टर फाइनल में दक्षिण कोरिया से सामना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लोकप्रिय संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा के 9वें संस्करण में विद्यार्थियों से बातचीत की। आज जारी एक वीडियो में प्रधानमंत्री ने परीक्षा के दौरान तनाव और चिंता से निपटने के तरीकों पर विद्यार्थियों को संबोधित किया। श्री मोदी ने छात्रों को अपने स्वयं के अनूठे शिक्षण तरीकों पर भरोसा रखने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विद्यार्थी की अपनी एक अलग शैली होती है और उन्हें अपनी तैयारी के तरीके पर पूरा विश्वास रखना चाहिए।
पहली बात है, आप अपनी जो पैटर्न है उस पर पूरा भरोसा करो, लेकिन जो पैटर्न के लिए सुझाव देते हैं उसको ध्यान से सुनो, समझने की कोशिश करो और उसमें आपको लगता है यार मेरी पैटर्न तो है लेकिन ये चीज मैं अगर जोड़ दूं तो अच्छा होगा, लेकिन किसी के कहने पर मत जोड़ो, अपने अनुभव से जोड़ो।
श्री मोदी ने विद्यार्थियों से शिक्षकों, अभिभावकों और मार्गदर्शकों द्वारा दिए गए सुझावों को ध्यान से सुनने और उन्हें गहराई से समझने पर जोर दिया। श्री मोदी ने कहा कि सच्चा आत्मविश्वास तब आता है जब मार्गदर्शन को आत्मविश्वास के साथ जोड़ा जाता है।
स्किल में भी दो प्रकार के स्किल है, एक है लाइफ स्किल, दूसरा है प्रोफेशनल स्किल। स्किल की शुरुआत तो ज्ञान से ही होती है तो उसका महत्व कम नहीं है। लाइफ स्किल उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, 100% वो तो अचीव करना ही चाहिए। प्रोफेशनल स्किल जिस प्रोफेशन में इंटरेस्ट है इसमें लगातार नया करते जाना।
प्रधानमंत्री ने शिक्षकों को प्रत्येक विद्यार्थी की सीखने की गति के प्रति संवेदनशील रहने की सलाह दी। सर्वांगीण विकास पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि शरीर और मन का विकास समान रूप से महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि अंतिम लक्ष्य केवल अंक नहीं बल्कि जीवन का संपूर्ण विकास होना चाहिए।
जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है और हम शिक्षा सही करते हैं गलत करते हैं तो बार बार हम अपने एग्जाम करते हैं, तो ये जो एग्जाम है वो हमें अपने आप को एग्जामिन करने के लिए एग्जाम है। अल्टीमेट गोल एग्जाम के नंबर नहीं हो सकता है, अल्टीमेट गोल संपूर्ण जीवन के विकास का होना चाहिए।
शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि परीक्षा पे चर्चा विभिन्न आयु वर्ग के करोड़ों छात्रों को प्रेरित करती है। नई दिल्ली में श्री प्रधान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ संवाद से छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ता है।
छोटी छोटी टिप्स के माध्यम से बच्चों की कॉन्फिडेंस को बढ़ाना, बच्चों की आइडियाज को प्रस्फुटित करवाना और बच्चों को एक होलिस्टिक डेवलपमेंट की ओर ले जाना, ये प्रधानमंत्री जी ने देश में कानों की इंस्टीट्यूशन पिछले कई सालों के अंदर खुद प्रयास करते हुए उसको खड़ा किया है। मैं इसलिए देश की शिक्षा परिवार की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ।
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, अन्नपूर्णा देवी, गिरिराज सिंह, गजेंद्र सिंह शेखावत और जयंत चौधरी सहित अन्य मंत्रियों ने परीक्षा पे चर्चा के 9वें संस्करण को सुना। बांग्लादेश की राजधानी ढाका स्थित भारतीय उच्चायोग ने परीक्षा पे चर्चा के 9वें संस्करण का अपने परिसर में सीधा प्रसारण किया। लोकसभा की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। पहले स्थगन के बाद बैठक फिर शुरू होने पर कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और डीएमके सहित विपक्षी सदस्य नारे लगाते हुए सदन के बीचों बीच पहुंच गए। अध्यक्ष ने सदस्यों से कार्यवाही को बाधित न करने का आग्रह किया। हंगामे के बीच संबंधित मंत्रियों ने अपने मंत्रालय के दस्तावेज पटल पर रखे। अध्यक्ष के बार बार अपील के बावजूद विपक्षी सदस्यों ने हंगामा जारी रखा। इसे देखते हुए सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। आज सदन में केंद्रीय बजट 2026-27 पर चर्चा होनी थी, परंतु हंगामे के कारण चर्चा नहीं हो पाई। इससे पहले आज सदन की बैठक शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्य सदन के बीचों बीच पहुंचकर नारेबाजी करने लगे। श्री बिरला ने विपक्षी सदस्यों के व्यवहार पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने विपक्षी सदस्यों से सदन को सुचारू रूप से चलने देने की अपील की।
आप नियोजित तरीके से सदन नहीं चलाना चाहते, गतिरोध पैदा करना चाहते हैं। अभी तक 19 घंटे 13 मिनट सदन का समय बर्बाद हुआ है। 140 करोड़ जनता की अपेक्षा रहती है सदन चले, चर्चा हो, संवाद हो, लेकिन आप सभागृह की मर्यादाओं को समाप्त कर रहे हैं।
बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर ने आज लोकसभा में हंगामा करने को लेकर विपक्षी दलों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि संसद को सुचारू रूप से चलने दिया जाना चाहिए।
हम लोग देख रहे हैं, स्पीकर साहब ने बार बार बोल रहे हैं आप लोगों को बोलने का मौका दिया जाएगा, आप अपने जगह पर जाके बैठिए, लेकिन ये लोग कुछ नहीं सुन रहे। ये लोग पार्लियामेंट को चलाने नहीं देंगे, ये लोग पार्लियामेंट को गुमराह कर रहे हैं, और इसी के साथ इसका इंटेंशन जो है वो बहुत ही गलत है।
कांग्रेस के अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में कोई ठोस बात नहीं कही।
पार्लियामेंट के उनके 97 मिनट्स के भाषण में वो कोई ऐसा बात नहीं कही, और हम लोगों ने जो घंटों से बात करके उनको राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो विचार थे वो रखे उनके सामने, एक रिप्लाई भी उन्होंने नहीं दिया।
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 170 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का काम पूरा हो चुका है। राज्यसभा में आज पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री वैष्णव ने ये बात कही।
170 स्टेशन
हमने जिन 1300 स्टेशनों की परियोजना शुरू की थी उनमें से 170 स्टेशन पूरे हो चुके हैं और बाकी का काम तेजी से जारी है। हम रेलगाड़ियों के संचालन के साथ साथ काम कर रहे हैं, इसलिए हर काम बहुत सावधानी से और सुरक्षा का खास ध्यान रखते हुए किया जा रहा है। ये रेलवे का एक बड़ा परिवर्तन है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदृष्टि और नेतृत्व में हो रहा है।
देश में अब तक कुल 8,47,00,000 से अधिक किसान पहचान पत्र जारी किए जा चुके हैं। वर्ष 2026-27 तक 11 करोड़ किसानों के लिए किसान पहचान पत्र जारी करने का लक्ष्य रखा गया है। आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये जानकारी दी।
अब हर एक किसान का भारत के एक अलग पहचान होगी। अब तक देश के 19 राज्यों में किसान रजिस्ट्री तैयार करने की प्रक्रिया प्रगति पर है, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है अब तक 8,47,00,000 से अधिक किसानों की आईडी बनाई जा चुकी है।
ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने रेपो दर में कोई बदलाव नहीं किया है। इसे मौजूदा 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया गया है। चालू वित्त वर्ष के लिए छठी और अंतिम द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया है।
विकसित हो रही व्यापक आर्थिक परिस्थितियों और आर्थिक परिदृश्य का विस्तृत आकलन के बाद मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर यथावत रखने का निर्णय लिया है। एसटीएफ दर 5% बनी रहेगी तथा एमएसएफ दर और बैंक दर 5.5% पर कायम रहेंगी।
आरबीआई ने वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की मुद्रास्फीति के अपने अनुमान को संशोधित करके 4% और दूसरी तिमाही के लिए 4.2% कर दिया है। गवर्नर ने कहा कि मुद्रास्फीति के अनुमान में मामूली बढ़ोतरी मुख्य रूप से कीमती धातुओं के मूल्यों में वृद्धि के कारण है। आरबीआई ने वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि के अनुमानों को संशोधित करते हुए 6.9% और दूसरी तिमाही के लिए 7% कर दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज उड़ीसा के गुड़गुड़िया और बरेहीपानी के आदिवासियों तथा युवाओं के समूहों से बातचीत करेंगी। वे आज शाम भुवनेश्वर में ब्लैक स्वान समिट इंडिया में भी शामिल होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 2 दिन के मलेशिया दौरे पर रहेंगे। इसका उद्देश्य व्यापार, निवेश, ऊर्जा और नौवहन सुरक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करना है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज जम्मू कश्मीर के अपने दो दिन के दौरे के दौरान कठुआ जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे हीरानगर सेक्टर के अग्रिम क्षेत्रों का दौरा किया। गृहमंत्री ने सीमा सुरक्षा बल के जवानों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने हीरानगर सेक्टर में गुरनाम और बोबियान की सीमा चौकियों का दौरा किया और घुसपैठ रोकने के लिए सीमा सुरक्षा बल द्वारा किए गए इंतजामों का जायजा लिया। गृहमंत्री जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए जम्मू में एक व्यापक उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमरीका और रूस 4.5 वर्ष से अधिक समय के बाद पहली बार उच्च स्तरीय सैन्य वार्ता करने पर सहमत हो गए हैं। एक रिपोर्ट।
अमरीका और रूस के बीच उच्च स्तरीय सैन्य संवाद वर्ष 2021 के अंत में रोक दिया गया था क्योंकि फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण से पहले रूस और अमरीका के बीच तनाव पैदा हो गया था। उस समय डोनाल्ड ट्रंप का राष्ट्रपति पद के दूसरे कार्यकाल के लिए प्रचार चल रहा था और उन्होंने इस संघर्ष को जल्द समाप्त कराने का वायदा किया था। अमरीका की यूरोपीय कमान ने एक बयान में बताया कि सैन्य संवाद की बहाली से स्थायी शांति के लिए काम करने के लिए दोनों पक्षों को सैन्य संपर्क स्थापित करने का मंच मिलेगा। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य संघर्ष की बढ़ती आशंकाओं के बीच दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारियों की आज ओमान में वार्ता हो रही है। ईरान के पास अमेरिका नौसेना की तैनाती और दोनों देशों के बीच गहरे मतभेदों के कारण इस वार्ता से पश्चिम एशिया में तनाव कम करने की संभावना को लेकर संदेह जताए जा रहे हैं। अमेरिका ने पूर्वी प्रशांत महासागर में एक और पोत पर हमला किया है। इस पर मादक पदार्थों की तस्करी का आरोप था। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ ने कुछ घंटों पहले ही हमले की घोषणा की थी। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में पुलिस ने आज मुख्य सलाहकार यूनुस के आवास यमुना की ओर मार्च कर रहे सरकारी कर्मचारियों को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज, पानी की बौछारें, आंसू गैस और ध्वनि बमों का इस्तेमाल किया। प्रदर्शनकारी 9वें राष्ट्रीय वेतनमान को तत्काल लागू करने की मांग कर रहे हैं। जिम्बाब्वे के हरारे में अंडर 19 क्रिकेट एक दिवसीय विश्व कप के फाइनल में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से जारी है। भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए ताजा समाचार मिलने तक 17 ओवर में एक विकेट पर 149 रन बना लिए थे। इससे पहले भारत सेमीफाइनल में अफगानिस्तान को और इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल में पहुंचे। टूर्नामेंट में भारतीय टीम अब तक अपराजेय रही है। भारत ये टूर्नामेंट 5 बार जीत चुका है। चीन के चिंताओ में बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप की महिला टीम स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में चीन ने भारत को 3-0 से हरा दिया। इसके साथ ही भारत का खिताब बचाने का सपना टूट गया। क्वार्टर फाइनल के पहले सिंगल्स में तन्वी शर्मा चीन की गाओ फांगजी से 9-21, 9-21 से हार गई। दूसरे सिंगल्स में रक्षिता रामराज भी चीन की जू वेनजिंग से 14-21, 21-15, 17-21 से हार गई। उधर भारतीय पुरुष टीम का क्वार्टर फाइनल में दक्षिण कोरिया से मुकाबला होगा। होली पर इस वर्ष 1410 विशेष रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। पूर्वी मध्य रेलवे 285, पश्चिमी रेलवे 231, मध्य रेलवे 209 और उत्तर रेलवे 106 रेलगाड़ियां चलाएगा। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में आज दोपहर के कारोबार में मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 128 अंक गिरकर 83,186 पर और निफ्टी 75 अंक गिरकर 25,569 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विद्यार्थियों से कहा, परीक्षा की अपनी तैयारी के तरीके पर पूर्ण भरोसा रखें। शिक्षकों से प्रत्येक विद्यार्थी के सीखने की गति के प्रति संवेदनशील रहने को कहा। लोकसभा की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित। रिजर्व बैंक ने रेपो दर 5.25% पर बनाए रखी। रूस और अमरीका 4 साल बाद उच्च स्तरीय सैन्य वार्ता फिर शुरू करने पर सहमत। जिम्बाब्वे में अंडर 19 एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में भारत और इंग्लैंड के बीच फाइनल मुकाबला जारी। और बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में भारतीय महिला टीम क्वार्टर फाइनल में चीन से हारकर टूर्नामेंट से बाहर। पुरुष टीम का आज शाम क्वार्टर फाइनल में दक्षिण कोरिया से सामना। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।